करबला तक अहले बैत की पूरी कोशिश ये थी कि असल इस्लाम को नाबूदी से बचाए। चनांचे साबिका अदियान इलाही नाबूद हो गए, सलातीनों हुक्मरानों के जुल्म तशद्दुद से और दुनिया परस्तों की साजिश से और मुमिनीन की कोताही और काहिली से इस्लाम करीबी ही मुश्किल पेश आने वाला था। इसीलिए अइम्मा ने पूरी कोशिश की करबला तक के असल इस्लाम को बचाया जाए। फिर करबला के बाद दूसरा नुक्ता वाज़ हुआ कि लोगों के पास इस्लाम के सही हद व ख़ाल का इल्म नहीं है। यज़ीद जैसे को बतौर खलीफा मानना और सबसे बेहतर शहर कोफा, कोफा की हालत को देखे, पहला हुसैन के साथ देते हैं, दावत भेजते हैं, फिर यजीद का नुमाइंदा इब्ने ज़ियाद के साथ देते हैं, फिर बाद में ज़ुबैरियों के साथ देते हैं, बाद में मुख्तार के साथ देते हैं, बाद में मुख्तार के कातिल ज़ुबैरियों के साथ देते हैं, बाद में दोबारा बनी उमिया के साथ देते। ये जो हालात है, ये इसके एक अहम वजह दुनिया परस्त से अपनी जगह पर है, सरदारों की ख़रीद फरोश अपनी जगह पर है, लेकिन एक अहम वजह ये है कि मज़हब के उसूल और फरू खतूत मर्ज़ हदूद वाज़ह न होने की वजह से सो इस्तेफादा होता है, तावीलें करते हैं,
यानी दीन की शक्ल बदल के कबूल कर दे,
यानी शक्ल ही पहले से इतने ज़्यादा वाज़े
नहीं
है। आप जानते हैं क़ुरान मुसलमानों के दरमियान था, लेकिन हदीस पर पाबंदी लग गई, हदीस लिखने की इजाज़त नहीं मिली और ना बताने की इजाज़त मिली। इस वजह से आप जानते हैं ये 150 साल के बाद अहादीस लिखी गई, सबसे पहली किताबें 150 साल के बाद। अलबत्त हमारे पास अहले बैत अइमा अतहर होने की वजह से कोई मुश्किल पेश नहीं आया। असहाबे अली ने इब्तदाही से, अबू राफे वगैरह ने इब्तदाही से कुछ किताबें लिखी, लेकिन आम तौर पर मुसलमानों की हालत। तो इसीलिए आप देखिए, जब कोई हदीस ना हो तो किस तरीके से दीन के हद व हाल सामने आएगा। तो फिर इमाम के ज़माने में फतुहात हो गया था, ईरान, हिंदुस्तान, यूनान, मुख्तलिफ इलाके, तो दुनिया के अफकार मुसलमानों के दरमियान आ रहे थे। उन अफकार के आने से मुसलमानों को, यानी मुसलमान कुफर की तरफ जा रहे थे। जिंदीक जो निकले मुसलमानों के दरमियान, उसी दौर के आसार है।
जिंदीक एक दहरिया फ़िरका है,
हाँ वही काफिर जो होता है, मुसलमान है लेकिन काफिर हुआ है
मैदान अमल में,
हाँ अफकार के लिहाज से, ख्यालात के, जैसे अभी मगरिब से आने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं,
हम जिसे आजकल कहते हैं ब्रॉड माइंडेड और
इस्लामी चीज़ों पर एतराज करते हैं, हाँ, आखिर तक इस कुसुम के। तो वहाँ पर तो ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी कि मज़हब के तमाम हद हाल मालूम हो जाए। तो ये करबला के बाद से शुरू हुआ। इमाम हफ्तुम ने, इमाम चाहरुम जब मदीना पहुँचे, आपने दरस देना शुरू किया। उस सख्त हालात में जब आप दुनिया से जा रहे थे, 187 शागिर्द आपके मदरसे में थे। उस वक्त के वसाइल को देखिए, हुकूमत के जुल्म तशद्दुद को देखिए, अहले बैत की तन्हाई को देखिए, यही बहुत बड़ी तादाद।
मेरे ख्याल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला के बाद कहते हैं कि उंगलियों के पे गिनने के बराबर भी शिया नहीं।
शुरू में तो यही था कि फरमाया कि हमारे मुख्तलिफ रिवायत ज़्यादा 20 का नाम, 7 की तादाद आई है, 5 की आई है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा
20
वाली रिवायत मौजूद है। ऐसे हालात में, क्योंकि लोग देखते ख़तरा है इनके साथ देने में, और दुनिया भी दूसरी तरफ है, असहाब पैगंबर के साथ कैसे पेश आए, खाने काबे के साथ कैसे पेश आए, मस्जिद नबवी के साथ कैसे पेश आए आपके सामने, यानी यज़ीद के ज़माने में अहले बैत, असहाब पैगंबर, मस्जिद नबवी, खाने काबा, सब की भी हुरमती हो गई। अब लोग दुनिया परस है اور دین کے خد و خال بھی معلوم نہ ہو، صرف قرآن رہ گیا ہے جس کے ترجمہ زیادہ زیادہ سمجھتے ہیں، اور اس کے نافذ کرنے والے صحیح نہ ہو، تو لوگوں کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے. الناس علی دینی ملوک، ہم لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. تو یہاں پر پھر امام پنجم کے زمانے میں اس سے مزید یہ مدرسہ وسیع تر ہو گیا، اور امام ششم کے زمانے میں یہ مدرسہ اپنے اوج تک پہنچا، معراج تک پہنچا. 4000 شاگرد اس مدرسے کے تھے تمام تر مشکلات کے باوجود. آج کل کے یونیورسٹیوں کی طرف یا حوزات کی طرف نہ دیکھے، اگر ہمارے حوزات میں، دینی مدارس میں اگر رہائش کا انتظام نہ ہو، کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، تو کتنے لوگ رہ سکتے ہیں؟ اس زمانے میں ایسا انتظامات نہیں تھا، اپنے ذاتی خرچے پر دین سیکھتے تھے. تو خلاصہ امام نے اتنی بڑی تعداد میں طلباء کی تربیت کی، مذہب کے خد و خال واضح کر دیا، ہر علم میں ماہرین کی تربیت کی. اس طریقے سے کیا ہے، مذہب کے تمام اصول و فروع واضح کر دیا، تو آپ کے نام پر مشہور ہوا مذہب جعفری آپ کے نام پر، کیونکہ یہ خد و خال کسی اور مذہب میں نہیں تھا.